जो अष्टदेव है वो अभी भी नंबरवार डिटैच है, अपने लौकिक परिवार से डिटैच है, अपने अपने नाम के धन से डिटैच है, संबंधियों से डिटैच है, संपर्कियों से डिटैच है, तन के पदार्थों से भी डिटैच है। नहीं, हमको खिचड़ी नहीं चाहिए, हमको तो लड्डू पेड़ा जलेबी ही चाहिए, तो डिटैच हुए ना।
So by saying that the eight DTs, their stage is such that they are detached even now, whether it is through the Laukik family members of the Laukik world, whether it is through the relatives of the world, those who come in their contact and connection, whether it is being detached through the wealth which is in their name, they are detached even to that. Whether it is the worldly materials, they are also detached to that. They don't say we can't eat khichdi, we need rich food to eat. They won't say this.
So it is complete no desire.
मतलब इसका मतलब है
कोई इच्छा मात्र में भी दिया।
आई हैव डिजायर बाबा, नो डिजायर, टोटल नो डिजायर।
नंबर वाइज है ना,
नंबर वाइज, यस वी ऑल गो थ्रू नंबर वाइज, बट टू प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस नष्ट मोह, इट हैज टू बी, नष्ट मोह मीन्स टोटल डिटैचमेंट, डिटैचमेंट मीन्स नो डिजायर, इज दैट करेक्ट? नो डिजायर एनीथिंग, वी आर सीइंग
इन वॉइस,
नॉट सीइंग, we are hearing and not hearing, we are feeling and not feeling,
in voice maybe detached, maybe detached or not, maybe detached,
I know,
in voice, but in practical,
practical how,
maybe zero,
practical is the hardest, Baba.
Feel?
Yes Baba,
hey, this
is the hardest, this is our exam that we are going through,
practical ka exam hai,
practical exams,
bol ka exam nahi,
we can think very we can think intellectually, practically desire,
Baba is saying the exams will take place practically, you can't just say, if you just speak you cannot pass, you have to practically do it, only then you'll pass,
it will come suddenly, correct,
mana achanak pariksha aayegi na,
come suddenly anytime,
अचानक परीक्षा तो आएगी, वो कड़क परीक्षा होगी, जिस बात में हमारी कमजोरी होगी वही परीक्षा आएगी।
बाबा इज सेइंग द एग्जामिनेशन इट विल कम प्लेस, इट विल टेक प्लेस सडनली, इट विल कम इन फ्रंट ऑफ अस सडनली, एंड व्हाटएवर इज अवर वीक पॉइंट द सेम काइंड ऑफ एग्जाम विल कम फॉर अस।
सो हाउ डू वी ओवरकम इट बिफोर द एग्जाम कम्स?
माना ये जो सारी कमियां हैं इनको हम परीक्षा होने से पहले ही कैसे पार कर ले, हम परीक्षा के लिए कैसे प्रिपेयर करें?
मंथन करें।
बाबा सिंह, इट इज थ्रू चर्निंग, यू शुड थिंक एंड चर्न,
दिस थिंकिंग एंड चर्निंग, आस्क बाबा टू एक्सप्लेन इट अगेन, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एरिया फॉर मी टू अंडरस्टैंड।
बोल रहे ये जो मनन चिंतन की बात है उन्हें समझ में नहीं आती है, दोबारा समझाने के लिए कह रहे हैं। ये जो मनन चिंतन वाली बात है ना, कि मनन चिंतन,
मनन चिंतन झूठा भी होता है सच्चा भी होता है, वो सच्चाई है, वो रियलाइजेशन की बात है।
बाबा इज सेइंग द चर्निंग कैन बी ट्रू, इट कैन आल्सो बी फॉल्स, सो दिस इज अबाउट रियलाइजिंग।
अभी तो रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है।
व्हेन आई रीड योर नॉलेज बाबा, आई टेक इट एज ट्रूथ, बट इफ आई गो डीप इनटू इट बाबा, माय वरी इज आई माइट
ना, ज्ञान उन्हें समझ में आता है, ज्ञान को वो मानते हैं, लेकिन उस ज्ञान की जब वो गहराई में जाते हैं तो उन्हें डर है कि कहीं मनमत ना मिक्स हो जाए।
तो वेरीफाई करो,
यू शुड हैव इट वेरीफाइड।
कदम पदम पर श्रीमत लेना का मतलब क्या है?
बाबा सिंह, व्हाट इज मेंट बाय फॉलोइंग श्रीमत एट एवरी स्टेप, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बाबा इज आस्किंग यू, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलोइंग श्रीमत एट एवरी स्टेप?
फॉलोइंग श्रीमत मींस फॉलोइंग बाबास डायरेक्शन, बाबास whatever Baba is saying, as per whatever you read, as the face truth of it. So whatever that you are reading and your understanding of what you have read is Baba's truth. That I understand.
मैंने कदम कदम पर श्रीमत पर चलना, मना जो बाबा डायरेक्शन देते हैं, जो भी वो मुरलियों में पढ़ते हैं, जो सच्चाई है उसे फॉलो करना है, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है,
उसे फॉलो भी करना है, और मन के अंदर जो संकल्प आते हैं और जो हम निर्णय निकालते हैं कि ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसे भी वेरीफाई करना है।
बाबा इज सेइंग यू शुड फॉलो इट।
हमने जो संकल्प चलाया वो राइटियस है या रॉन्ग है।
बाबा इज सेइंग यू शुड सर्टेनली फॉलो इट, बट व्हाटएवर थॉट्स कम टू योर माइंड यू शुड हैव इट वेरीफाइड व्हेदर इट इज करेक्ट और व्हेदर इट इज इनकरेक्ट।
सो दैट इज व्हाई I have to ask you everything for Baba. This is simple. For Baba, everybody is asking all kinds of questions. It's very simple. But for us, it's complex. For us, number wise, it's complex.
बोल रहे बाबा से हर तरह के बच्चे प्रश्न पूछते हैं, बाबा के लिए आसान है लेकिन हम बच्चों के लिए कठिन है।
नंबर वार कठिन है, नंबर वार आसान है।
इट इज इजी, नंबर वाइज इट इज डिफिकल्ट, नंबर
वाइज इट्स ऑल वेरी इंडिविजुअल। Okay, Baba, you said that only one person will be completely disease-free or have a disease-free body during the 21 births. Is that a true statement?
उनका कहना है कि बाबा ने कहीं ऐसे कहा है कि एक ही आत्मा की 21 जन्मों के लिए कंचन काया होती है, पूरी कंचन काया 21 जन्मों के लिए एक ही आत्मा को मिलती है।
हाँ?
तो ये सही है क्या?
ज्यादा योग होगा तो ज्यादा जन्म जन्मांतर काया सुंदर रहेगी, योग कम होगा तो उतनी ही काया कमजोर बनेगी।
बाबा इज सेइंग द मोर यू स्टे इन योगा यू विल गेट अ ब्यूटीफुल बॉडी टू दैट एक्सटेंट एंड इफ यू डोंट स्टे इन योगा दैट मच, इफ यू डोंट रिमेम्बर द फादर सो मच, देन यू विल गेट अ वीकर बॉडी। तो 21 जन्मों के लिए सबकी सुंदर काया होती है। तो ऐसी बात तो नहीं है ना कि 21 जन्मों के लिए केवल एक शिव बाबा की ही कंचन काया होती है।
21 जन्मों क्यों, 84 जन्मों की बात करो, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बनता है।
बाबा इज सेइंग व्हाई आर यू स्पीकिंग अबाउट ओनली द 21 बर्थ्स, स्पीक अबाउट द 84 बर्थ्स, बिकॉज बेस्ड ऑन द 21 बर्थ्स देयर इज द अकाउंट ऑफ द 63 बर्थ्स।
ओके बाबा, ओके व्हेन यू से अकाउंट ऑफ द 63 बर्थ्स, सो 21 बर्थ्स, सो इफ यू आर बोर्न, if you are born, say if you don't do purushad, enough purushad, and you are born say the last birth of the silver age, what is the impact of that birth on 63 births?
उनका कहना है कि ठीक है समझे, किसी आत्मा ने पुरुषार्थ नहीं किया, वो एक उदाहरण दे रहे, अगर किसी आत्मा ने पुरुषार्थ नहीं किया और त्रेता के आखिरी जन्म में उनका जन्म हुआ, त्रेता के आखिरी जन्म में उनको कंचन काया मिली, तो उसका असर 63 जन्मों पे क्या होगा?
लास्ट में जाकर के ठीक मिलेगा,
दे विल रिसीव अ गुड बॉडी इन द एंड,
कलयुग के अंत में जाके अच्छा जन्म मिलेगा,
दे विल गेट अ गुड लाइक दैट पर्सन यू गेव द एग्जांपल ना, सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन विल रिसीव अ गुड बर्थ इन द एंड ऑफ द आयरन एज,
एंड ऑफ द आयरन एज दे रिसीव अ वेरी गुड बर्थ, सो फॉर द 63 बर्थ्स दे विल नॉट रिसीव,
माने 63 जन्मों में फिर उनको नहीं मिलेगा अच्छा जन्म,
कम मिलेगा,
दे वोंट रिसीव अ बर्थ दैट इज एज गुड
एज गुड बिकॉज़ दे केम एट द एंड।
तो 21 जन्मों में जिस जिस क्रम से वो आए उसी क्रम से हिसाब है।
सो लाइक से सपोज इन द कॉन्फ्रेंस गोल्डन एज यू आर गिवन द पोजीशन ऑफ अ मेड, सो हाउ विल दैट बी एन इम्पैक्ट फॉर द 63 बर्थ्स, दैट मींस विल दैट पर्सन रिमेन मेड फॉर द 63 बर्थ्स।
उनका कहना है कि जैसे जो स्वर्णिम संगम युग है ना, उसमें अगर किसी को दासदासी का पद दे दिया गया तो उसका असर 63 जन्मों पे क्या होगा, कि वो 63 जन्म दासदासी ही बनता रहेगा?
क्या
ना, जो संगम योगी स्वर्ग है ना, उसमें अगर किसी को दासदासी का पार्ट दे दिया गया,
काय का पार्ट दे दिया गया,
दासदासी
बैकवर्ड पार्ट मिला,
दासदासी का पार्ट मिल गया, अगर
संगम युग के अंत में,
नहीं संगम योगी स्वर्ग में,
संगम युग स्वर्ग में
अगर किसी को दास दासी का पार्ट मिला, दास दासी होते हैं,
हाँ?
तो फिर 63 जन्मों में उसका मन असर,
ओ, एकदम सतयुग के आदि में राधा कृष्ण के बाद ऊंचा पार्ट किसका होगा?
इन द गोल्डन एज हु विल हैव अ हाई पार्ट आफ्टर राधा एंड कृष्ण,
संगम युग
in the golden age, Baba
is saying. Golden age.
After Radha Krishna, who will be having a high position after them?
After them.
After Radha and Krishna.
Baba is asking a question to me. Ram Sita.
After Radha Krishna, who will be having a high position in the golden age?
I'm not very clear on that.
Nahi, unko nahi pata.
The positions, as I understand Baba, the positions is that, okay, the highest would be Confluence Age Lakshmi Narayan, followed by the first prince and prince and princess, which would be just the Golden Age Lakshmi Narayan, then followed by, in order, the positions of...
मतलब उनका कहना है कि पद ऐसे ही डिक्लेयर होंगे ना कि सबसे ऊंचा पद जो है वो संगमयुगी लक्ष्मी नारायण का, उसके बाद फिर जो सत्ययुग में राधा कृष्ण होंगे उनका पद उनके बाद है।
जी। तो संगमयुग में है ऊंचे पे ऊंचे स्टेज में ऊंची पद में, चाहे वो दास दासी भी है तो भी सत्ययुग वालों से भी ऊंचे है।
इफ दे आर इन द गोल्डन एज इन द कॉन्फ्लुएंस एज, इफ दे आर इन द कॉन्फ्लुएंस एज, then even if they are the maids and servants, they are higher than those who come in the golden age.
Higher than those who come
even if they are maids and servants in the confluence age, they are higher than those in the golden age.
I know in the golden age nobody realizes their position, they are all so unconscious. But okay, so now at confluence age or confluence golden age, when they are maid and servant, will they take on the maid and servant position from 63
में? ऊंच नीच पद की कोई मतलब भासना नहीं होती है, कोई ऊंच है कोई नीच है इसका
भासना नहीं। जैसे परिवार है, परिवार में सबसे छोटा बच्चा है और परिवार का मुखिया है, ऊंच नीच की भासना नहीं है, लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको सब बड़ों की बात माननी पड़ती है कि नहीं?
Baba is giving an example. You said in the golden age there won't be the feeling of high and low position. Baba is giving an example. Like now, if there is a family, in a family there is the youngest member in a family. He is younger to the eldest member in the family, but he doesn't have that feeling. Still, he has to obey all the elders in the family. So there will be the same kind of feeling in the golden age. इनका प्रश्न है कि मतलब संगम युग में तो जिनको दास दासी का पद मिला, सत्ययुग त्रेता में उनको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब 63 जन्म शुरू,
मेंटेलिटी यहाँ ऐसी बन जाएगी कि जो छोटा है छोटी स्टेज वाला है वो यहाँ से मेंटेलिटी उसकी छोटी जैसी बन गई, जो ऊंची स्टेज वाला है मेंटेलिटी वहीं से संगम युग से ऊंची स्टेज बन गई।
बाबा सिंह, इट इज अबाउट द मेंटेलिटी। If someone receives a low position, then from the confluence age itself, he will have this inferior feeling in him.
From the confluence age
itself, he'll have this inferior mentality in himself.
Okay.
And the one who is superior will have a superior mentality.
Okay. So this inferior mentality carries on from 63. Say from the copper age, the first birth that they take in the copper age, the 63 births, will they actually physically take the positions of maidens?
तो जिन्हें संगम युग में दास दासी का पद मिला वो 63 जन्मों से मन जो द्वापर का पहला जन्म है तब से लेकर के उनको मन स्थूल में दास दासी बनना पड़ेगा।
हाँ, तो नीचे स्टेज में होंगे।
दे विल बी इन अ लो स्टेज।
उनके मुकाबले जो फर्स्ट स्टेज वाले हैं उनके मुकाबले नीचे स्टेज में होंगे।
दे विल बी इन अ लो स्टेज व्हेन कंपेयर्ड टू दोज़ हु आर इन द हाई स्टेज।
प्रजा वर्ग वालों की कंपैरिजन प्रजा वर्ग वालों से होगा, जो राज परिवार के हैं उनका कंपैरिजन राज परिवार वालों से होगा।
बाबा इज सेइंग दैट दोज़ हु बिलोंग टू द सब्जेक्ट्स कैटेगरी विल बी कंपेयर्ड विद द सब्जेक्ट्स कैटेगरी एंड दोज़ हु बिलोंग टू द रॉयल फैमिली विल बी कंपेयर्ड विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली।
सो 63 बर्थ्स विद द सब्जेक्ट कैटेगरी इन संगम युग गोल्डन एज, दैट मींस विल बी सब्जेक्ट कैटेगरी इन फ्रॉम 63 बर्थ्स एंड दे कांट बिकम किंग।
एंड अगर संगम युग में दास दासी है तो 63 जन्मों में भी दास दासी ही रहेंगे, राजा रानी का पद नहीं मिल सकता उन्हें।
संगम युग में दास दासी है तो वो सतयुग के जो दास दासी वाले दास दासी पर के जो लोग हैं उनसे सबसे ऊंचे हैं।
बाबा इज सेइंग इवन इफ दे आर मेड्स एंड सर्वेंट्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज, दे आर हायर देन द मेड्स एंड सर्वेंट्स इन द गोल्डन एज,
फर्स्ट एज,
बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एज। तो वो जब द्वापर में जाएंगे तब क्या होगा?
वो वहाँ भी दास दासियों में सबसे ऊंचे रहेंगे।
देयर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ मेड्स एंड सर्वेंट्स दे विल बी द हाईएस्ट।
सो इट गोस दे कांट मूव देयर पोजीशंस,
मतलब उससे आगे वो लोग नहीं बढ़ सकते हैं।
आगे वाले कैसे पीछे वालों से आगे बढ़ जाएंगे?
Baba is saying that how will those who come in the beginning go ahead than those who come in the end?
How can those who come in the beginning go
ahead than those who come in the end?
सत्युग के दूसरे जन्म में दूसरे धर्म की आत्माएं ऊंची स्टेज में आ जाएंगी ना.
पापा इज सेइंग इन द सेकंड बर्थ ऑफ द गोल्डन एज द सोल्स ऑफ द अदर रिलीजियंस विल गो इन अ हाई स्टेज. तो हम मना गिरते जाएंगे
ऊपर वाले फिर नीचे गिरते चले जाएंगे. हमेशा ऊंचे कैसे रहेंगे?
दोज हु आर हाई दे विल स्टार्ट डिग्रेडिंग. हाउ कैन दे स्टे सुपीरियर ऑल द टाइम?
So now I have to think of what I am now and what I was before. Okay. Never mind. That one is personal question.
Okay.
Baba, later. This time. Businesses. When Baba says businesses and all will fall and only Baba's shop remains at the end. When and question of destruction of religions, irreligiousness in the world. When does this start to occur?
Is it asking about the destruction
of the religions? You know, the religions where irreligiousness occurs, and also when businesses, economic, political, organizations start to fail. When will that start occurring, Baba? From the period of Mahashivratri onwards, after 2000.
Baba ne kaha hai na ki sab dhande fail ho jayenge. Sab dhande fail ho jayenge.
Sab dhande nuksan ho jayenge.
To ye kab ki baat hai? Matlab kab se hoga Mahashivratri ke?
Abhi bhi ho raha hai.
It is happening
even now. Even now it is happening. Correct. So it will carry on happening in.
Badhta jayega.
Will go on
intensity. So that's when the outside world also will start to search for God.
तभी दुनिया वाले भी भगवान को ढूंढेंगे.
एंड नाउ व्हेन वी टेल गॉड हैज कम, बाबा हैज कम, आई एम ट्राइंग टू टेल पीपल यू नो दिस, देयर इज गॉड हियर, कम, नोबडी वांट्स टू लिसन.
बोल रहे और अभी ये हाल है कि वो दुनिया वालों को कहना,
ऑल आर हैप्पी मलेशिया, ऑल आर हैप्पी.
बोल रहे कि अभी ये हाल है कि वो दुनिया को कहना चाहते भगवान आया है, लेकिन वो मानते नहीं है. क्योंकि मलेशियंस जो है वो लोग मतलब खुश है, हैप्पी है, वो लोग भगवान को ढूंढ नहीं रहे हैं.
वो क्या नहीं कर रहे?
भगवान को नहीं ढूंढ रहे, वो लोग खुश है अपनी दुनिया में.
उनके लिए अभी स्वर्ग है.
इट इज हेवन फॉर देम नाउ.
आई नो इट्स हेवन. दे वोंट बिलीव. बाबा एवरीबॉडी वोंट बिलीव बिकॉज इट्स स्टिल अ गुड हैप्पी कंट्री सॉर्ट ऑफ. ओके I think that's the kind of all these questions I have. Almost I have. Okay, if we don't know Hindi, Baba, we can't go into Satyug.
अगर हमें हिंदी नहीं आती तो क्या हम सतयुग नहीं जाएंगे?
आ जाएगी.
You will learn it.
I will learn it. Baba, teach me, okay?
Baba सिखाएंगे मुझे.
You teach me Hindi.
बूढ़ी बूढ़ी माता हिंदी सीख रही हैं.
But teach me knowledge also.
Baba is saying even the old mothers are learning Hindi.
Okay, so Baba, we just think of Baba and Baba will teach Hindi.
मतलब हम बाबा के बारे में ही सोचते रहे, बाबा हमें हिंदी सिखा देंगे.
But we, how much Hindi, the level Baba speak in, the level we are going to learn is going to be very different.
बोल रहे लेकिन बाबा की हिंदी जिस लेवल की है और हम जिस लेवल की हिंदी सीखेंगे उसमें तो बहुत अंतर होगा.
क्यों अंतर होगा?
Baba is saying, why will there be a difference?
बाबा
तो बाबा है ना. बाबा की मातृभाषा हिंदी है. हमारी मातृभाषा हिंदी.
बाबा का हर जन्म में थोड़ी मदर टंग हिंदी रही.
बाबा मदर टंग वॉज नॉट हिंदी इन ऑल द बर्थ्स.
ऑल द बर्थ्स सो वी ओके बाबा वी टू बर्थ इन फॉरेन लैंड्स. व्हाई बाबा?
हमने विदेशों में जन्म क्यों लिया? अंत में सेवा करने के लिए.
बाबा जब जन्म लेता है विदेशों में तो आपको लेना क्या बड़ी बात?
इवन बाबा इज बोर्न इन द फॉरेन कंट्रीज, व्हाट इज अ ग्रेट डील इफ यू आर बोर्न इन द फॉरेन कंट्रीज.
सो नाउ दिस वर्क आवर रोल नाउ इन फॉरेन कंट्रीज वी आर बोर्न बाबा एंड वी आर कमिंग ऑल द वे टू इंडिया टू. सो वी आर भारतवासी सोल्स बट वी आर कमिंग नाउ वी आर बोर्न इन अ बॉडी दैट इज इन फॉरेन लैंड्स. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बॉडी इन दिस फॉरेन लैंड? Now, what are we supposed to do?
उनका कहना है हमारी आत्मा भारतीय है लेकिन हमारा शरीर जो है वो विदेशों में जन्म हुआ है शरीर का, तो इसका कारण क्या है, हमें क्या करना है?
आपने कुछ गड़बड़ किया होगा बाबा के साथ?
Must have done something wrong with Baba. You must have done something wrong with Baba.
I think so too, Baba. I am sinful. I never said I was pure.
मैं पतित हूँ, मैंने नहीं
कहा कि मैं पतित हूँ. We offended you at the last birth. That's why we are now in Malaysia, far away from you. And we have to take a long trip to come and see you.
इसलिए हम दूर हैं, मलेशिया में हैं, हमें दूर से आना पड़ता है बाबा से मिलने के लिए.
अभी नजदीक आ जाइए, कोशिश करो.
बाबा सिंह ट्राई एंड कम क्लोज टू हिम नाउ.
इंटेलेक्चुअली बाबा,
मन बुद्धि से.
प्रैक्टिकल अलग होता है, मन बुद्धि से अलग होता है.
प्रैक्टिकली वी फ्लाई एंड कम.
प्रैक्टिकली इट इज डिफरेंट एंड थ्रू द माइंड एंड इंटेलेक्ट इट इज अ डिफरेंट केस.
सो क्लोज नाउ बाबा.
प्रैक्टिकल इज डन बाय फिजिकली.
प्रैक्टिकल इज डन फिजिकली.
सो now must have the government of India to give us full visa, no restriction, then we can come. Government of India is only giving us 1 month, Baba. 1 month, even 6 months visa, 1 month only we can be here. After we have to go back and then come back to
India. की government अभी एक महीना रहने की
परमिशन
एक ही महीने ही रहने की परमिशन दे सकती है इंडियन गवर्नमेंट.
गवर्नमेंट को हम मानते ही नहीं, हम नेशनलिटी हम नेशनलिटी इंडिया की ले लेते हैं.
Baba is saying, we take the nationality of India. We don't accept what the government says.
But the government is not going to put me behind bars.
Kya?
If I stay over there.
Government मुझे जेल में डाल देगी अगर मैं यहीं रही तो.
ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी किसी भी देश की नेशनलिटी को त्याग पत्र दे सकता है.
Baba is saying, it is not like this. You can renounce any nationality you want. And you can accept any other nationality.
You can come here and be an Indian PR. Indian citizen. And I stay with Baba, right?
तो इस तरह मैं बाबा के साथ रहूंगी.
I got no other home. Baba so many. I have to come to my father so many.
मतलब मेरा और कोई घर तो नहीं है ना, मुझे बाबा के घर में ही आना है.
हो गया. जब सबको बुला लिया तो है. हाँ चलो टाइम दो.
नो बाबू जी बहुत सांस पड़ रही है. सो नॉलेजेबल.
बाबा तो रजाई देने के लिए आते हैं ना, राज्यों सिखाकर राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु राजा बनकर जन जनमानतर मारकाट मचाना, दूसरों को दुख देना, इम्प्योरिटी धारण करना, तो राजा बनकर क्या फायदा? ऐसी रजाई किस काम की? इससे अच्छा विजयमाला है ना, जो जन जनमानतर प्योरिटी को धारण करते हैं. बल रुद्र माला बाप को पहचानते हैं, फिर भी प्योरिटी न होने के कारण तो दुखी ही है ना.
जो विजय माला वाले हैं, उनमें ज्ञान है, हैं? ज्ञान ना होने के कारण 63 जन्मों में जब पुरुष बनते हैं तो झूठा वैराग करते हैं या सच्चा वैराग करते हैं? है? राजा ही तो नहीं करते लेकिन वैराग करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं. तो सन्यासी झूठे हैं या सच्चे हैं? झूठे हैं. शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, हम ही भगवान हैं. ब्रह्मा बाबा तो चला गया जिसके तन में शिव बाबा आता था. अब शिव बाबा किसके द्वारा कार्य करा रहा है? हैं? हम बच्चे ही ब्रह्मा, हम बच्चे ही विष्णु, हम बच्चे ही शंकर. जो कुछ करना है वो हमारे प्रति करो, हम संदली पे बैठे हैं, हमसे दृष्टि लो, हमारी दृष्टि से तुम्हारी सृष्टि 84 जन्मों की सुधर जाएगी। तो कल्याण हुआ या अकल्याण हुआ है? अकल्याणकारी हुए। दूसरी बात क्या सभी राजाएं ऐसे होते हैं? जो तपस्या करें और नरकगामी बने, नहीं राजा बने और राजा बनकर के पाप ही पाप करें, सभी राजाएं ऐसे होते हैं या नंबरवार होते हैं? तो नंबरवार में कोई अव्वल नंबर भी होंगे, कैसे? बुद्धि में 100% ज्ञान भरने वाले भी कोई राजा होंगे या नहीं होंगे? जब ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, श्रीमत बुद्धि में भरी हुई है, तो श्रीमत के आधार पर चलने के कारण उनसे पाप कर्म कम होंगे या ज्यादा होंगे? है कम होंगे, या नहीं भी हो, सबको सुख देने वाले हो। जैसे पुरुषार्थी जीवन में नारायण का जो पार्ट है वो सबको अंदर से प्यारा लगता है, कि कोई कोई को बहुत घृणा आती है, है? नारायण का जो पार्ट है वो सबको प्रिय है, सबसे नीचे से नीचे जो हैं उनसे भी उनका प्यार, और जो ऊंचे ऊंचे पाठधारी हैं उनको भी नारायण से प्यार आता है। नारायण से किसी को द्वेष होता है? नहीं होता है। तो नारायण वाली आत्मा 63 जन्म में होगी या नहीं होगी? तो ये कैसे कह दिया कि तप कर राज कर नरका, वो अव्वल नंबर के लिए भी लागू होता है, और उसके बाद भी तो और 8 नंबर हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते। तो जो 8 और भी उसके साथी हैं वो भी उसी स्टेज में होंगे या नरक में जाने नरक गामी होंगे? है होंगे। अगर होंगे भी तो लास्ट जन्म में जाकर के होंगे, इसलिए कि नीचे गिरेंगे तो ऊंचे भी उठेंगे, और नीचे गिरेंगे भी नहीं कभी भी तो ऊंचे उठने का आनंद आएगा। सबसे ज्यादा साहूकारी का आनंद उसको आएगा जो अपने पूर्व के जीवन में बहुत गरीब रहा हो, उसको साहूकारी जीवन का आनंद आएगा, या जो अपने बचपन के जीवन में गरीब रहा ही नहीं है, साहूकारी में ही पला है और बड़े होकर के भी साहूकारी ही रहा, किसको ज्यादा आनंद आएगा साहूकारी का? जो पहले गरीब था। ऐसे ही जो पहले गरीब बैगर था और बाद में बैगर से प्रिंस बन जाता है, विश्व का मालिक बन जाता है, तो उसकी खुशी का पारावार रहेगा? नहीं रहे। ऐसे ही है। कोई है जो कलयुग के अंत में भी आकर के सूर्यवंशी हैं? ऐसे जो खुद भी बहुत सुखी रहते हैं और पूरा परिवार भी बहुत सुखी रहता है अंतिम जन्मों में भी, संगम युग के अंतिम जन्म की बात नहीं कर रहे। कौन से जन्म की बात कर रहे? कलयुग के अंत तक के 84 जन्मों की बात कर रहे। उन जन्मों में भी बहुत सुखी रहते हैं, शांत और सुखी। ऐसे भी कोई पुरुषार्थी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? जिनके ज्ञान और योग बल और याद की ताकत अंतिम जन्म तक भी काम आती रहे, क्योंकि याद से हेल्थ मिलती है। हेल्थ होगी तो इंद्रियों का सुख भोग सकेंगे, या हेल्थ ही नहीं होगी तो इंद्रियों का सुख भोग सकेंगे? है हेल्दी जितने होंगे उतना ही इंद्रियों का सुख भोग सकेंगे। हेल्दी नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, सिनेमा और टीवी काहे से देखेंगे? नाक में साइनस ही बना रहता है जिंदगी भर, जुकाम ही बना रहता है, उनको खुशबुएं आएंगी नहीं आएंगी? कान से बहरे हैं, जिंदगी से पैदा हुए, तो भगवान की वाणी भी उनको सुनाई पड़ेगी है नहीं सुनाई पड़ेगी? भगवान की वाणी का भी सुख नहीं ले सकेंगे। अच्छे अच्छे वाद्य यंत्रों का सुख लेना वो तो दूर की बात रहेगी। ऐसे ही और इंद्रियां, इंद्रियों में ताकत है, हेल्दी है तो सुख ले सकेंगे। हेल्दी नहीं है तो सुख नहीं ले सकते। तो हेल्थ कैसे आती है? जितनी गहरी याद में रहते हैं उतने जास्ती हेल्दी बनते हैं, जितने जास्ती याद में रहते हैं उतने ज्यादा लंबे समय तक हेल्दी बनते हैं। तो याद में रहने वाली आत्माएं नंबरवार होंगी या सब एक जैसी होंगी? नंबरवार होंगी। जो आठ हैं जरूर बहुत हेल्दी रहेंगे जन्म जन्मांतर, जिनको धर्मराज की सजाएं भी नहीं मिलती। क्या प्रश्न था? है
मैं ये प्रश्न था कि रुद्रमाला में आने से तो विजयमाला अच्छी है ना, विजयमाला जन्म जन्मांतर की प्योरिटी धारण करती है, और रुद्रमाला तो इम्प्योर रहती है तो इसलिए दुखी रहती है ना।
रुद्रमाला इम्प्योर अंत तक रहती है कि अंतिम स्टेज में जाकर के नंबर वार विजय प्राप्त होती है।
वो तो संगम में
था। संगम युग में, संगम युग में कोई ऐसे पुरुषार्थी नहीं होते हैं जो एक सेकंड में बीज रूप स्टेज में समा जाए, नहीं होते हैं। तो फिर वो विजय माला के मुकाबले ऊंची स्टेज में रहेंगे या नीची स्टेज में रहेंगे?
नीची स्टेज।
जिनके लिए बाबा ने बोल दिया ये स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है नरक की दुनिया में रह करके भी जो नरक के जितने भी जीवड़े हैं, आत्माएं हैं, प्राणी हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करके रहेंगे या उनसे हार खाएंगे? विजय प्राप्त करके रहे तो विजय से खुशी होगी या दुख पैदा होगा? है सुखी हो? नंबरवार है या सब एक जैसे हैं? हाँ ऐसों की संख्या ज्यादा है, और विजय माला में ऐसों की संख्या ज्यादा है। जैसे बोला, क्या बोला?
वही विजय माला जो है वो प्योरिटी को धारण करती है, लेकिन रुद्रमाला प्योरिटी न होने के कारण दुखी है।
हाँ तो ज्यादा सुखी कौन रहते हैं?
विजय माला के
मन के ज्यादा से ज्यादा हैं जो सुखी रहते हैं। और रुद्रमाला के मन के ज्यादा से ज्यादा हैं जो दुखी रहते हैं, बाकी सब एक जैसे हैं होते हैं क्या है? सब तो नहीं होते।
बाबा ने बताया, मैंने किसी ने पूछा, गणेश की दो पत्नी है ना, गणेश की दो पत्नी है ना, बुद्धि और सिद्धि। बाबा ने कहा बुद्धि जो है वो जगदम्बा है और सिद्धि जो है वो जगदम्बा है लेकिन गणेश तो ब्रह्मा है और जगदम्बा तो माँ है ना तो वो कैसे हुआ?
ब्रह्मा की माँ है और ब्रह्मा से पैदा होने वाली बेटी है जगदम्बा। जगदम्बा सरस्वती जो है, जगदम्बा जो जगदम्बा है वो बेटी है या माँ है? सरस्वती बेटी है। सरस्वती ही तो, सरस्वती माने ज्ञान में तीखी, सरस्वती माने ज्ञान में तीखी। तो ज्ञान में जो तीखी है वो जब तामसी बनती है तो वही क्या बन जाती है? है? नहीं, महाकाली बनती है। और महाकाली की जीभ लंबी है या छोटी है? ज्ञान में सबसे सुनाने में सुनने में ज्यादा तीखी है या कमजोर है? है? पंजाबियों को गुरुद्वारे में जाओ तो 24 घंटे वहां क्या चलता रहता है? है? गुरुवाणी चलती रहती है। और जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं उनमें लगातार गुरुवाणी नहीं चलेगी। तो इसका फाउंडेशन कौन डालता है? जगदम्बा।
आत्मा एक ही है जो बुद्धि का ही पार्ट देते थे, सिद्धि का ही पार्ट देते थे, या अलग अलग आत्मा?
एक ही देवी है जो 9 देवियों में पार्ट बजाती है, भूल गए? हाँ। और
भगवान का पार्ट गुप्त है ना, तो गुप्त उनका भगवान का पार्ट गुप्त क्यों है? जिसको कोई सुनता भी नहीं, समझता ही नहीं, लेकिन ज्ञानी सभी लोग करते हैं, और भगवान को ज्ञानी सुनने की क्या आवश्यकता है?
भगवान है तो सबसे ऊंची मेंटेलिटी वाला होगा, मध्यम या नीचे मेंटेलिटी वाला होगा? है? जिसकी बहुत ऊंची मेंटेलिटी होगी, कोई ग्लानी करे चाहे महिमा करे, प्रभावित होना चाहिए, वो तो प्रभावित ही नहीं होगा, वो तो मस्त कलंदर, बेगमपुर का बादशाह। उसके किसी या ग्लानी करने से क्या लेना देना, वो तो जानता है जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। भगवान की महिमा करेगा तो महिमावान बनेगा, भगवान की ग्लानी करेगा तो संसार में ग्लानी पाने वाला बनेगा। तो उसको चिंता है? है? नहीं। गीता में क्या बोला संपन्न आत्मा के लिए? क्या बोला? मान और अपमान दोनों से परे। हाँ। निंदा स्तुति में तुल्य है, बराबर रहने वाला, कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, तभी तो वो ऊंचे से ऊंचे है। कोई निंदा करे, घोड़ा लटक गया, और कोई महिमा कर दे, ओहो, बहुत ऊंचा अनुभव करने लगे, बहुत खुशी आ गई। तो उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं कहे जाएंगे। देवताएं जो होती हैं वो महिमा प्रिय होते हैं। उन्हें क्या प्यारा लगता है, कोई महिमा करे तो खुश हो जाएंगे। देवात्मा की कोई ग्लानी करे तो मोड़ा लटक जाता है, अवस्था ही खराब हो जाती है। तो देवताओं से भी ऊंच कौन है? देवताओं से ऊंच भगवान है। भगवान कहा ही इसलिए जाता है कि वो ऊंचे से ऊंच पार्ट बजाता है। और
बाबा कोई आगे बढ़ते थे, कोई आगे बढ़ते पुरुषार्थ में, ज्ञान में, कोर्स कराने में, और कोई उनका ईर्ष्या करते थे, तो उनका क्या सुखी
होगा? जो जैसा करते हैं उनको वैसा ही मिलेगा जन्म जन्मांतर। जो ज्ञान सुनाने में तीखे जा रहे हैं जन्म जन्मांतर साहूकार बनेंगे, उनसे ईर्ष्या करने वाले ज्ञान सुनेंगे सुनाएंगे नहीं, गरीब बनेंगे लेकिन उनसे ईर्ष्या करेंगे, तो फायदा होगा या नुकसान होगा? ये तो नुकसान का सौदा हो गया। जो याद करेंगे वो हेल्दी बनेंगे जन्म जन्मांतर, याद नहीं करते हैं लेकिन ईर्ष्या करते हैं याद वालों से, बड़े जोगी बने फिरते हैं, तो वहां भी क्या होगा? है लुंजुम पुंजुम भज गोविंदम लूले लंगड़े काने कुब्जे, जो हेल्दी है उनको गालियां देंगे। तो प्राप्ति हुई या अप्राप्ति हुई? ये तो बड़ी अप्राप्ति होगी। कोई बहुत सेवा करते हैं, सेवा का मेवा मिलता है उनको खुशी का, क्योंकि शिव बाबा उन बच्चों को याद करते हैं। जिनके ऊपर शिव बाबा की याद के वाइब्रेशन पड़ेंगे वो तो खुशी ही रहेंगे या दुखी होंगे? खुश रहते हैं। उनसे ईर्ष्या करने वाले है? ईर्ष्या करने वालों का क्या हाल होगा? ईर्ष्या कर करके दुखी होंगे या सुखी होंगे? दुखी होते रहते, यहाँ भी दुखी होते हैं और शूटिंग पीरियड में दुखी होते हैं, तो वहां भी दुखी। परचिंतन में आए या स्वचिंतन में आए? ये तो परचिंतन हो गया। कोई क्या करता है? जो करता है अपने लिए करता है, अच्छा करता है अपने लिए, बुरा करता है अपने लिए, हमें उसका चिंतन करने से क्या लेना देना? परचिंतन पतन की जड़। और
बाबा राजा हरिश्चंद्र अच्छे कर्म किया या राजा उदय सिंह अच्छे कर्म किया?
राजा हरिश्चंद्र अच्छे कर्म किए या
राणा उदय सिंह अच्छे
कर्म? राणा
उदय सिंह अच्छे कर्म।
ओहो राणा उदय सिंह पिटाई करता है कि नहीं बच्चे की?
पिटाई करता है।
बाहुबल चलाता है या नहीं है? चलाता है। खून की नदी बहाता है कि नहीं है? वो अच्छा लगता है आपको। तो प्रश्न आता है, नारायण तो बाहुबल नहीं चलाता, नारायण तो योग बल के आधार पर सारा संसार चलाता है, तो कहां योगी जिसे हरिश्चंद्र कहा गया है सतयुग का राजा? हरिश्चंद्र कहां का राजा है? सतयुग का राजा है। सत्य युग में जिसने राज्य किया वो है दानी हरिश्चंद्र, जिसने अपना तन मन धन समय संपर्कियों को संबंधियों को सब का त्याग किया, सब का दान किया, पूरी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाई। तो कहां हरिश्चंद्र और कहां कलयुगी राजा कौन उदय सिंह, कहां 16 कला संपूर्ण और कहां कलयुग के अंत में आकर के विदेशियों के संग के रंग से कलाहीन बन गए, लेकिन फिर भी जो कलाहीन है कलयुग के और धर्म वाले, उनके मुकाबले तो उदय सिंह का पार्ट ऊंचे है या नीचे है? हैं? उनके मुकाबले तो ऊंचे है, बाकी नारायण से तुलना नहीं कर सकते, हरिश्चंद्र से तुलना नहीं कर सकते। और
बाबा एनएस में जो लोग जाते हैं ना, वो लोग मतलब क्या पुरुषार्थ करने से एनएस में जाएंगे और उसके पीछे क्या राज है?
जो बाप के बच्चे बन करके रहते हैं जन्म जन्मांतर, बाप है भोलानाथ तो भोलेनाथ के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? भोले भाले, सीधे साधे। भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, तिकड़मबाज नहीं है। क्या 420 वाली बुद्धि नहीं है? तो ऐसे बच्चे बाप को प्रिय हैं। वो सहज सहज कहाँ जाते हैं? हैं? भले बुद्धि के बहुत तीखे भी नहीं है क्या, लेकिन साधारण बुद्धि है, सच्चे हैं या बात बात में झूठे हैं? हैं? सच्चे, दिल के सच्चे और साफ हैं, इसलिए एनएस में आ जाते हैं। सच्चे दिल पर साहबराजी, इसलिए उठा लेते हैं।
420
हर काम में हर बात में तिकड़म मिला, सीधे साधे होके नहीं चलते। जैसे किसी के दो भाई हैं, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, बड़े भाई ने 420 करके झूठे उठे साइंस कर आके सारी प्रॉपर्टी हड़प ली छोटे भाई की, तो उसे क्या कहेंगे? 420 कहेंगे।
बाबा भक्ति मार्ग में शिवलिंग पर नैवेद्य चढ़ाते हैं, ऐसे कहा जाता है कि वो नैवेद्य जो है वो जो योगी लोग होते हैं वही खा सकते हैं, तो क्या अर्थ है?
भगवान पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है शिव के ऊपर, खास शिवलिंग के ऊपर, प्रसाद माने प्रसाद माने क्या? प्रसन्नता। भगवान के ऊपर भाई भी अर्पण होते हैं, कुमार भी अर्पण होते हैं, अदर कुमारियां भी अर्पण होती हैं, कुमारियां भी अर्पण होती हैं। सबसे जास्ती संसार को खुशी इनमें कौन देते हैं? हैं? जोर से बोलो, कुमारियां सबसे जास्ती खुशी देती है। तो प्रसाद माने प्रसन्नता, तो सबसे ज्यादा जो प्रसाद देती है संसार को, प्रसन्नता पैदा कर देती है ज्ञान सुना करके, अपनी ज्ञान में धारणा करके, धारणा के आधार पर प्रसन्न कर देती है, भगवान के साथ निश्चल प्यार करती है, अब व्यभिचारी याद में रहती है, ऐसा प्रसाद जो भगवान के ऊपर अर्पण होता है, कुमारों को तो अर्पण किया जाता है नहीं किया जाता, अदर कुमारियां तो बांधे ली होती हैं, अर्पण भी हो जाए तो धतूरे का फूल, क्या शादी हो गई ना, तो अधर हो गई, संपूर्ण कुमारी नहीं, पवित्रता की बहुत सुगंध नहीं रहती, फिर भी अर्पण हुई। इसलिए बाबा क्या करता है, उन अर्पण होने वालों को क्या करता है, क्या करता है, कुमारियों को क्या बना देता है, माता बनाता है, और अदर कुमारियों को कन्या बना देता है। बनाता तब है कि अदर कुमारी बनने के बाद अर्पण हो जाएं, तो अर्पण होने के बाद फिर कभी भी किसी के साथ लगाव झुकाव पैदा न करें, ये शर्त है। तो वो कुमारी हो गई, हो गई कि नहीं है, कुमारी हो गई। उन कुमारियों को पुरुषार्थ के आधार पर जरूर कुमारियों का ही फल मिलेगा। तो क्या प्रश्न था,
जो योगी होते हैं वो खा सकते हैं,
जो योगी होते हैं वो उस नैवेद्य को खाते हैं। योगी माने जिनकी बुद्धि मन कहाँ लगा हुआ है, है शिव बाबा में। और संपन्न योगी कितने हुए है, मुकर्रर योगी कौन हुआ, एक। तो एक जो है उसके लिए तो जो भी प्रसाद जो भी अर्पण हुआ शिव के ऊपर, उनको स्वीकार करते। लेकिन एक के समान और भी है राजधानी में, नहीं लगातार है या अंत में है, है? धीरे क्यों बोल रहे, जोर से बोलो ना। जो और आठ है वो लगातार योगी हैं या अंत में योगी हैं, अंत में योगी बन जाते हैं, वो भी धर्म पिताओं के भी पूर्वज बन जाते हैं। तो धर्म पिताओं को तो इतना हुजूम का हुजूम फॉलो करता है, अपनी मन बुद्धि अर्पण कर देता है, वो तो उनसे भी श्रेष्ठ हैं। शिव की अष्ट मूर्तियां कही जाती हैं, क्या है जैसे शिव के बारह ज्योतिर्लिंगम है, लेकिन बारह ज्योतिर्लिंगमों में से तीन कैसे हैं, नष्ट देव उनको छोड़ दो, उन पर जो अनुपाण होते हैं वो तो बेधर्मी बन जावेंगे, क्या बन जावेंगे, शर्तिया बेधर्मी बन जावेंगे, संघ का रंग लग जावेगा। बाकी जो आठ बचे वो आठ है पक्के सूर्यवंशी हैं, वो मन बुद्धि से जब संपन्न बनेंगे तो संपन्न होने के बाद मन बुद्धि से देह का सुख लेंगे या नहीं लेंगे, है, है? नहीं लेंगे, इसलिए उनके ऊपर कोई पाप पाप भी नहीं लगेगा। ओम शांति।